بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو کچھ بھی سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو جنرل پرنسپلز ہیں جو ہم نے لگانے ہیں, یعنی ہمیں اسٹروکس آنی چاہیے, پازیٹیو اٹینشن کب دینی ہے, نیگیٹو اٹینشن ہم نے کب اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میری کوئی ٹیکنیک ورک نہیں کر رہی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب آپ مسئلہ ڈائگنوز کریں گے, اب آپ اس مسئلے کے مطابق جب اس کو ہینڈل کریں گے, وہاں سے اب اس کا بیہیویئر امپروو ہونا شروع ہوگا. آج کا جو میں نے لیا ہے بچوں کا غصہ, کچھ تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جیسے 2 سال 3 سال, ان کے ٹینٹرمز زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں 10 ایئرس سے آن ورڈ آپ دیکھیں گے, پھر ان کے غصے کے ایپیسوڈ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب ہم بچوں کا غصہ فیس کرتے ہیں. بچے آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو بہت زیادہ مار بھی دیتے ہیں, چیخنا چلانا بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ٹپیکلی مائیں کیا کہتی ہیں کہ میں نے مثلاً اس کی پریولیجز روک لی, میں نے اس کا فلاں چیز بند کر دی, وہ لیپ ٹاپ بند کر دیا, اس کا کمپیوٹر بند کر دیا, ٹیب بند کر دی, دوستوں کے ساتھ ملنا بند کر دیا, میں نے اسے بہت سمجھایا, میں نے اس کو مار کے بھی دیکھ لیا, لیکن اس کا یہ بیہیویئر نہیں ٹھیک ہو رہا. یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب لڑتا ہے تو ان کو بہت مارتا پیٹتا ہے, بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہوتے ہیں اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ نے غصے کے جو سائنس ہیں اس کو آپ کو پک کرنا آنا چاہیے. ہمارا ایکچولی حال یہ ہے, نہ اپنے ایموشنس کو کوئی نام دیتے ہیں, نہ کسی اور کے ایموشنس کو کوئی نام دیتے ہیں. اپنے ان سائنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کب کب غصے میں آ جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے جو اس میں دیکھنی ہوتی ہے, کس وجہ سے اس کو غصہ آیا. مثلا غصے پہ تو ہم بچوں کو ڈانٹ بھی دیں گے, کہہ بھی دیں گے, لیکچر بھی دے دیں گے, غصہ حرام ہے, لیکن یہ کہ کس وجہ سے یہ غصہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. مثلا بہن بھائیوں کی لڑائی, ایک چھوٹا بہن بھائی تنگ کر رہا ہے, کوئی وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو رہا, کوئی ان کی نیڈ ہے جو انمیٹ ہے, کئی بچے جیسے کھاتے پیتے صحیح طرح نہیں ہیں, گھر میں ان کو وہ اپریسیشن نہیں مل رہی جو کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہو کے غصے میں آ جاتے ہیں, کمپیریزنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اسکول میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو, کئی دفعہ آپ کو اسکول سے کمپلین آئے گی کہ جی یہ بچوں سے لڑتا ہے, لڑکوں کی خاص طور پہ آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ لڑ رہا ہے اسکول میں, لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی انہیلدی قسم کے کمپٹیشن چل رہے ہیں یا ایون ماں باپ کی طرف سے چل رہے ہیں, کزنس کے ساتھ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب زیادہ کمپیئر کریں تو اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. جو بہت امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ بچوں کی سیلف اسٹیم جب لو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر اینگر بہت زیادہ آتا ہے. تیسرا اسٹیپ جو اس کا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی وکیبلری سکھانی ہوتی ہے اینگر کی, کہ ہاؤ دے کین ایکسپریس دیئر فرسٹریشن, یعنی رونا یا کسی کو مارنا یا چیخنا یہ کوئی حل نہیں ہے آپ کو اگر غصہ آیا ہے. اور چوتھا اسٹیپ کیا آ جاتا ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو اینگر مینجمنٹ اسکل سکھاتے ہیں. مثلا ایک اسکل ہے کہ آپ نے سیلف ٹاک کیسی کرنی ہے. جب آپ کو غصہ آیا ہو کسی پہ اور آپ لگاتار بار بار کہہ رہے ہو کمال ہے اس نے یہ کر دیا, لو جی یہ کوئی بات تھی کرنے والی, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چیز بڑھتی ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ سوچ نہیں رہا, کہ آپ کو بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ اپنے آپ کو بتائیں گے مجھے غصہ آیا ہوا ہے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سالو اٹ ان اے بیٹر وے, مجھے غصہ آیا ہوا ہے لیکن میں نے اس غصے کا اظہار صحیح طریقے سے کرنا ہے, میں نے کسی کو مارنا نہیں ہے, میں نے کسی پہ چیخنا چلانا نہیں ہے, میں نے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہو جس سے مسئلہ بھی حل ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں نے راضی کرنا ہے. کیونکہ ہم اکثر بچوں کو صرف اس موقع پہ یہ کہہ دیتے ہیں بس غصہ نہیں کرنا, اور وہ بچے پھر آگے سے کیسی کمپلینس کرتے ہیں, آپ اس کی سائڈ لیتی ہیں, اب میرا مسئلہ حل نہیں کرتی. جی سولوشن نہیں ہم دے رہے ہوتے ہیں نا, سولوشن دینا ہے ہم نے. دوسری چیز بریدنگ ایکسرسائزز آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو فوراً کام کر لینا ہے. ماں جو ہوتی ہے اس سے زیادہ چیخنا شروع کر دیتی ہے, کیا ہو گیا ہے, کیوں یہ کر رہے ہو. ایک ڈیپ بریتھ لیں, 2-3 دفعہ لمبے لمبے سانس لیں, خاموش ہو, چلو اب ہم اس مسئلے کو کچھ حل کرتے ہیں. تیسری چیز آپ بچوں کو کاؤنٹنگ دے دیں, فارورڈ بیکورڈ. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ایموشنل برین ہوتا ہے ہمارا, اور ایک ہمارا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ برین جو سوچنے والا برین ہے. غصہ ہمیں آتا ہے تو ہمارا ایموشنل برین ہمیں زیادہ ہائپ دے دیتا ہے, उस वक्त ये काम करना होता है कि हमने अपने इमोशनल ब्रेन को डाइवर्ट करना होता है अपने इंटेलिजेंट ब्रेन की तरफ, थिंकिंग ब्रेन की तरफ। तो जब आप कोई भी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाता है। जब हम दुआएं पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो भी क्या करता है कि आपके इमोशंस को सेटल कर देता है। 10 तक अगर वो काउंट छोटा बच्चा है तो 10 तक काउंट करें, बड़ा बच्चा है तो बैकवर्ड काउंट करवाएं। पांचवी चीज जो करने की होती है वो है कि बच्चों को आप टाइम आउट सिखाते हैं। आप उनको बताते हैं कि कुछ जगहों पे हम फिजिकल टाइम आउट करते हैं, कुछ जगहों पर हम इमोशनल टाइम आउट करते हैं। ये टाइम आउट क्या होता है, फिजिकल टाइम आउट क्या है, आप उस जगह से चले जाते हैं। आप मसलन कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूँ, आई नीड टू लीव द प्लेस। ये यूजली आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ आपकी खुद अथॉरिटी होती है या बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब बच्चा टीचर के सामने स्कूल में नहीं कर सकता। हाँ, फ्रेंड्स के साथ ब्रेक में कर सकता है कि अगर कोई बच्चा तंग कर रहा है तो अपने आप को वहाँ से हटा दे, दूसरी तरफ चला जाए। इमोशनल टाइम आउट तब होता है जब आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, यानी आपसे कोई बड़ा होता है, अब आप वहाँ से हिल नहीं सकते उस जगह से, तो अब आप क्या करते हैं वहाँ पर इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि मैंने यहाँ जवाब नहीं देना। ये आप जितनी दफ़ा सिखाते जाएंगे, बच्चों से गलतियाँ होंगी लेकिन वो सीख लेंगे। बच्चों को आप दुआएं सिखाएं, लेकिन अक्सर आप देखें ऐसे मौके पे ऐसा शैतान हावी होता है कि वो दुआएं भी भूल जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो करने का काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अब आपने एक पूरा प्लान बनाना है, बिहेवियर मेकओवर प्लान बनाना है, बिहेवियर को चेंज करने का प्लान बनाना है। और ये आप जैसे अपने बच्चे के लिए हो अपने वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई और आपसे पूछ रहा है ना, तो ये 5 स्टेप बताने के बाद अब आप उनको प्लानिंग बताएंगे। क्योंकि हमारे पास अक्सर मदर्स आती हैं, वो थोड़ी सी बात सुनती हैं, वो चली जाती हैं, वो कहती हैं बहुत अच्छा इन्होंने मशवरा दिया, अब वो 2 दिन के बाद थक जाती हैं, वो कहती हैं नहीं ये तो वर्क नहीं कर रहा, इसका तो फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे तो मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही। उसको कैसे फिक्स किया जाएगा? सबसे पहले आपने पेरेंट को बताना है या पूछना है, या जो भी पेरेंट हो, कि अच्छा मेरा बच्चा गुस्सा करता है तो मैं कैसे गुस्सा करती हूँ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो रोल मॉडलिंग से जा रही है। अगर हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हो नहीं सकता कि हमारा बच्चा उसे डिफरेंट बिहेव करे। उसका पहला बिहेवियर तो आएगा ही हमारे जैसा। ज़्यादातर मदर्स जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हैं, ससुराल वालों को ब्लेम करती हैं, और कहती हैं दरअसल फिर मुझे तो गुस्सा आना ही होता है, अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लेती हैं। तो अब वो कहेंगी देखिए मेरा तो कोई फिर कंट्रोल नहीं ना, मसलन जी अगर इसकी दादी करती हैं, इसके फादर करते हैं, इसके कोई चाचा करते हैं, अब वो चीख रहे हैं तो मैं उनको तो नहीं रोक सकती ना, तो बच्चा तो मेरा सीखेगा। तो उस पर आप क्या बताएंगी कि नहीं, आपका बच्चा आपके बिहेवियर से सीखेगा, आपका बच्चा ये सीखेगा कि जब कोई और गुस्सा कर रहा है तो माँ क्या कर रही है, क्या आप ये 5 स्टेप्स करती हैं इससे। और दूसरा ये कि आप उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करती हैं, और तीसरा ये कि फिर आप बच्चे की काउंसलिंग कैसे करती हैं। आपने उनको बताना है कि आप बहुत बच्चे को ऑब्जर्व किया करें कि आपका बच्चा अपने गुस्से को कहाँ कहाँ कब कब कंट्रोल करता है, कहाँ कर पाता है, कहाँ नहीं कर पाता है। फिर उनसे कहें कि जब आप अपने बच्चे को सिखाना शुरू करेंगी तो आप ये नोट करेंगी अपने पास किसी डायरी में कि वो मसलन 1 हफ्ते में कितनी दफ़ा गुस्सा करता है, कितनी देर का एपिसोड होता है उसका। ये भी आप देखेंगी कि गुस्से की इंटेंसिटी कितनी डिफरेंट होती है, क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से वो कंट्रोल हुआ। आप अपने बच्चे के उन साइंस को आइडेंटिफाई करेगी कि अब गुस्सा होने लगा है। मसलन हम बहुत कॉमनली अपने घरों में कहते हैं जब बच्चे खेलते हैं ना आपस में कजन्स, तो 2 घंटे तो अच्छे खेलेंगे, उसके बाद क्या होगा, लड़ाई होनी ही होनी है। मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए किन किन सिचुएशन में लड़ाई हो सकती है। आपने ये भी देखना है कि कौन कौन से वो पोटेंशियल सोर्सेज हैं या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, उसको भी कम करना है। बहुत सी माओं का मसला ये है कि वो बड़े बच्चे को बड़ा बना देती हैं, चाहे वो 6 साल का हो, और जो 3 साल का बच्चा है उसकी हर बात मानी जाती है, या कोई एक फेवरेट बच्चा होता है उसकी सब बातें मानी जाती हैं, और एक को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। जेंडर डिफरेंस भी हो सकता है कि बहनों को कहा जाए कि बेटियों को कि भाई तुम लोगों को तो चुप ही रहना चाहिए, बेटे को हम ज़्यादा एक्सप्रेशन सिखा देते हैं। आप 1 हफ्ते के लिए लिख के लाएं कि किन किन चीज़ों पर इसने गुस्सा किया, आपके सामने ब्लैक एंड वाइट आ जाता है। या आपका बच्चा 7 साल का 8 साल का, एक छोटा बच्चा है वो बड़े बहन भाई की कॉपी पे कुछ लिख देता है, तो आप बड़े बच्चे को पहले से ही ट्रेन करेंगे कि वो अपनी चीज़ें संभाल के रखें। कज़न्स हैं, उनकी लड़ाई होती है, उस पर गुस्सा आता है, आप कज़न के आने से पहले बता देंगे कि आपकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप शेयर नहीं करना चाहते, आप उठा के पहले रख देंगे। तो ये देखना है इनमें से कौन सी चीज़ें जो हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे बच्चों को डील करना सिखाना है। या बच्चों की वोकैबुलरी पे बहुत वर्क करना है।
एक चीज हेल्प करती है, अगर आप अपना कोई उस एज का बचपन का वाक्य सुनाए कि मेरे साथ भी ये हुआ था, दिस इज व्हाट आई फेल्ट, वो फौरन रिलेट करते हैं उसी तरह।
बिल्कुल बिल्कुल,
फीलिंग्स वाली बात है। मैंने पिंटरेस्ट पर से यही लिखा था कि बच्चों के एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वहाँ पे ना बच्चों के लिए इमोशंस का चार्ट है जिसमें स्माइली बना हुआ है या सैड बना हुआ है, मैंने कवर पे लगाया था। बच्चों को मैंने भी सिर्फ दो फीलिंग सिखाई है, तो उनको मैंने कहा कि पिकअप योर फीलिंग फ्रॉम हियर, तो देखा मैंने जैसे आई फील सैड राइट नाउ,
तो मतलब फीलिंग चार्ट्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बच्चों को समझ आ जाती है कि हम अपनी वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें। जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करते जा रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस भी करवाएंगे मुख्तलिफ सिचुएशन में। पार्क में बच्चे हैं, आपको लगता था आपके बच्चे को पार्क में बहुत गुस्सा आता था, आपने थोड़ा ज़रा गैप दिया, आप उसको जाके देखने दिया कि वो बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है। आपके पास बड़े क्लियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज भी होने चाहिए जब आपने करने हैं। 21 डेज से पहले बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आता, यानी आपको बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी बिहेवियर हो उस पर काम करना होता है।
मेरे बच्चे को किसी ने स्लैप किया और ठीक ठाक किया, उसकी यहाँ पे ना फिंगर्स आ गए, तो मैंने कहा क्या हुआ, किसने मारा, तो कहते हैं वो एक बच्चा मुझे मार के भाग गया। अच्छा, उनकी मदर आराम से खड़ी हुई है, किसी से बातें कर रही हैं। मैंने उसको बताया, मैंने कहीं देखो इसको संभालो, देखो, कहते कोई बात नहीं, उससे कोई इसको भी मार देगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।